तस्दीक नहीं कर पाए। कनाडा में हर पार्टी ने, कोई भी, चाहे वो मेयर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, ऑपोजिशन तक, सब ने इसराइल का साथ दिया। इंग्लैंड की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, मगर कनाडा में वहाँ एक शख्स है, और हमारे मुसलमान जो सलमा जाहिद ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने भी ओप्रेस्ड, जो कि चाहे वो ज्यूइश हैं चाहे वो पैलेस्टीनियन हैं, उनका साथ दिया है। एक जो एनडीपी की मुस्लिम है साले जामा, उन्होंने जो बयान दिया है, जिसके ऊपर उनकी पार्टी ने भी उनकी कलाई के ऊपर थोड़ा मरोड़ा दिया है, और हमारे जो प्रीमियर हैं उन्होंने भी कि वो उसको रिज़ाइन करना चाहिए, हालांकि शी डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग, उसने जो ओप्रेस्ड लोग हैं उनका साथ दिया है। वेयर एज एनडीपी ने कहा है कि जो पार्टी का स्टैंड है उसको शी हैज़ टू फॉलो द पार्टी स्टैंड। तो आप दुनिया के किसी भी लीडर की बात कर लें, खासतौर पर यूरोप के और मगरब के, None of them supported Palestine. Palestine को चाहिए क्या? वो तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि एक जो अरब लोग हैं, जो 10 करोड़ लोग जो हैं displaced हैं in the world, उसमें से 50% United Nations के साथ registered हैं, उनको वहाँ वापस आने दिया जाए, ताकि अगर कभी referendum हो या voting हो तो वो वोट डाल सकें। वेयर एज पूरी दुनिया से यहूदियों को जाके पैलेस्टाइन में आबाद करके, वहाँ तो वो लोग थे ही नहीं, उनको पूरी दुनिया से आबाद किया गया, तो उन फिलिस्तीनियों को ये हक भी नहीं दिया जा रहा। मगर दुनिया में किसी को भी नजर नहीं आ रहा, आपके कैनेडियन गवर्नमेंट जिसके बारे में हम कहते हैं, उनको भी नहीं नजर आ रहा।
70-75 साल से फिलिस्तीनियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, अब तक 1,15,000 ऑन रिकॉर्ड शहीद हो चुके हैं फिलिस्तीनी। और उसके बाद भी मैं एक स्पीच अगले दिन सुन रहा था, हमारे कंजर्वेटिव के लीडर हैं पियर पोलिवर, उन्होंने मुझे दो दफा उन्होंने कहा है हम इसराइल है। अब पता नहीं ये फिक्रा उन्होंने कहां से उठाया है, ये उर्दू का फिक्र है या अरबी का फिक्र है, उन्होंने कहा हम इसराइल है। अगर उसके बाद हमारी लीडरशिप ने, कनाडा की लीडरशिप ने ये कहना है कि हम इसराइल है, इसका मतलब है जो कुछ इसराइल के साथ हो रहा है समझो हमारे साथ हो रहा है, और हम इसराइल के साथ हैं, हम ही इसराइल हैं। अगर ये मौकफ हमने लेके चलना है तो वो तो चले हम अमरीका के, क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं और उनके इतादी हैं, मुस्तकिल इतादी हैं, हमने शायद साइन करके कहीं दिए हुए हैं कि उनके साथ ही चलना है, चले एनी हाउ। लेकिन मैं तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, इस ट्यूजडे वाले दिन कनाडा को, इंडिया वालों ने कैनेडियन जो हमारे वहां डिप्लोमेटिक स्टाफ था 2/3 उनको इस मंगल की शाम तक इंडिया छोड़ देने का कह दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा था आप निकल जाएं यहां से, वी डोंट नीड यू, क्योंकि आप पहले ही यहां ओवर हैं, जरूरत से ज्यादा कैनेडियन स्टाफ यहां मौजूद है। 2/3 को कनाडा, इंडिया छोड़ देने का कह दिया गया है, हमें तो वो फिक्र करनी चाहिए, और हमें वो एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं, हमें ये कहा गया है कि जिस तरह वहां से कैनोला ऑयल आपका चाइना ने बैन किया था, जब वाइवा के चीफ एग्जीक्यूटिव को आपने, उनके डायरेक्टर फाइनेंस को आपने अरेस्ट किया था ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में 2-4 साल पहले, तो उन्होंने आपका कैनोला ऑयल बैन कर दिया था। हम भी, इंडिया ने कहा है कि हम भी जितना कनाडा से कैनोला ऑयल और जूसी ग्रेन्स और दालें और बाकी चीजें आती हैं हम बैन कर देंगे, हम उनकी इंडिया में इंपोर्ट बंद कर देंगे। हमें उस तरह की धमकियां मिल रही हैं, हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हमें इंडिया जैसे मुल्क में जिसके स्टूडेंट्स यहाँ संभाले नहीं संभलते, जिनके लोग यहाँ वर्क वीजों के लिए मरते हैं, और जिनके लोग यहाँ हर दफा जितनी इमिग्रेशन होती है उनमें टॉप 4 में इंडिया होता है, बल्कि शायद सबसे ऊपर इंडिया होता है, दूसरे नंबर पे कहीं चाइना, तीसरे पे फिलीपीन, और 5वें 6वें पे कहीं पाकिस्तान का नंबर आता है। इमिग्रेंट्स भी सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं, स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं, ट्रेड भी हमारा कुछ $10 बिलियन से ज्यादा इंडिया के साथ है, कनाडा का, हमारा सब कुछ इंडिया के साथ है, और इंडिया हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को कह रहा है कि आप कनाडा छोड़ जाएं, यू ऑल आर पर्सना नॉन ग्राटास, आप नापसंदीदा शख्सियात हैं, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ इंडिया में आके बैठ गए हैं कैनेडियन। अब कैनेडियन ने ये दिन देखने थे कि इंडिया ने अपनी जमीन हमारे लोगों पर और हमारी डिप्लोमेटिक कोर पर तंग करनी थी, अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे लीडरान को तो वो फिक्र करनी चाहिए कि इंडिया के साथ जो मैच हमने शुरू किया है उसे किसी नतीजे पर पहुंचाएं।
बहुत शुक्रिया। आखिरी चीज को मैं खत्म करते हुए कि अभी आपको पता ही होगा कि G20 के हवाले से दो रोजा G20 के इजलास में सुना है कि कनाडा शिरकत करेगा कि नहीं करे। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने G20 की तमाम अराकीन को दावत दी और शिरकत का फैसला उनका होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखना होगा कि आया कनाडा से कोई शिरकत कर रहा है या नहीं, क्योंकि पार्लियामान से जो स्पीकर हैं वो शरीक नहीं हो सकते। तो इट्स इन स्ट्रेस्ड फॉर्म में है, मगर आपको आपको पता ही है कि इंडिया के जयशंकर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में आए हुए हैं। हमारी वजीर खारजा मेलानी जुली जो हैं वो बिहाइंड द डोर उनसे मिलने के लिए अमेरिका पहुंची भी हुई हैं। तो कमरे के पीछे कुछ न कुछ हो जरूर रहा है, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस आर पुअर एंड वीक। हम उनके मुताबिक
अच्छा, मैं यहाँ अभी
इंडिया इज स्ट्रांग, दे विल मेक कैनेडा वर्क अकॉर्डिंग टू देम।
अभी जब हम हमास की बात कर रहे थे और फिलिस्तीन की, तो उसमें मुझे याद नहीं रहा आपको मेंशन करना कि जहां दुनिया भर में हमास और फिलिस्तीन के इशू पे अपने अपने लोग सियासी मौकफ के आईने से उसी तनाजर में देखते हैं सूरत हाल को, हालांकि वो एक इंसानी अलमिया है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तकरीबन 1500 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसी तरह इसराइल की तरफ देखें तो वहां भी वो बताते हैं कि 1000 से ज्यादा लोग उनके मारे गए हैं। पता नहीं वो भी शहीद कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन जो भी गए हैं इसमें नहीं होना चाहिए था जैसा भी हुआ है। अब इस ऐसी सूरत हाल में भी आपने BBC जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड करती है, उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। उन्होंने एक ब्रिटिश अखबार में पूरा आर्टिकल आया है इस पे, उसमें उन्होंने कहा है कि रॉयल फैमिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट BBC को मजबूर कर रही है कि वो हमास को दहशतगर्द तंजीम लिखे, लेकिन आखिरी वक्त तक BBC वाले इस बात पर कायम है कि हम उन्हें अस्करियत पसंद लिखेंगे, हम उन्हें दहशतगर्द नहीं लिखेंगे। तो स्टैंड लेने वाले लेते हैं अगर उन्हें कोई अपनी जर्नलिज्म का, अपने एथिक्स का कोई ख्याल हो, लेकिन पाकिस्तान में फिर बात पाकिस्तान की तरफ आएगी। आपको पता है कि सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू जिस तरह पहले रोका गया, फिर पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इस पे, हम सब साफियों ने इस पे फख्र का इजहार किया कि डॉन ने कमाल कर दिया, डॉन TV ने और डॉन न्यूज़पेपर ग्रुप ने, कि उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि एक हाजिर सर्विस कर्नल जो है सदाकत अब्बासी को लेके उनके स्टूडियो में किस तरह आया और किस तरह उन्होंने गन पॉइंट पे एंकर से भी इंटरव्यू करवाया और इंटरव्यू देने वाले इसको भी गन पॉइंट पे इंटरव्यू कराया। तो लोगों ने बहुत तारीफ की डॉन की, लेकिन डॉन वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और 3-4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वही इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया। और उस दिन आरफा नूर, जो खुद पाकिस्तान की बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंग्लिश मीडिया में, इसके अलावा वो डॉन पे ही एक प्रोग्राम करती हैं आरफा नूर, उन्होंने ट्वीट किया था कि सहाफत का जनाजा है बड़ा धूम से निकले। जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा था उसके 40th मिनट में के दौरान ट्विटर पे जाके आरफा नूर का जब्त का पैमाना टूट गया और वो खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज में लिखती रही हैं, डॉन में लिखती रही हैं, डॉन न्यूज में एज एन एंकर पर्सन प्रोग्राम करती हैं, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने लिखा जबकि सहाफत का जनाजा है बड़े धूम से निकले। तो उसके अलावा फिर पाकिस्तान भर में जहां जहां किसी को सहाफत का कोई कदर होती है, कोई कीमत होती है, कोई एहसास था, सब लोगों ने इसको कंडेम किया कि ये डॉन वालों ने क्या किया। अब सुना है कि शेख रशीद साहब का कहीं इंटरव्यू कराने का प्लान बन रहा है, सुना है कि फारूक हबीब साहब का कहीं इंटरव्यू कराने का प्लान बन रहा है।
लेकिन क्या होता है,
मैं तो कहता हूं कि जिसके इंटरव्यू इन्होंने कराने हैं करा दें, लिटरली इमरान खान को कहें कि भाई तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ एक बंदा भी नहीं रहा, और सब बंदों को उससे अलग कर दें। उसके बाद लोगों को कहें कि हाँ इलेक्शन है, और इमरान खान से कहें एक सादा कागज लो, इस कागज पे अपने कैंडिडेट्स के नाम लिख के हमें पकड़ा दो, देखते हैं लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं कि नहीं चलते। आप उसके साथ जितने लोग हैं उनको खत्म कर दो, हटा दो, क्यों इस तमाशे में रखा हुआ है पूरी कौम को, आपने हटाने ही है ना। और आप ये समझते हैं कि शायद ये वोट इन लोगों का है, ना फारूक हबीब का वोट है, ना सदाकत अब्बासी का वोट है। सदाकत अब्बासी से पूछ लें, इंटरव्यू देने के बाद वापस अपने हलके में गया होगा, लोगों ने किस तरह उसका इस्तकबाल किया होगा और लोगों ने उसको क्या कहा होगा। और सदाकत अब्बासी की मां की वो चीख जिसमें वो आखिरी फिक्रे में कहती है कि हाय पुत्र तू केरे जालमा दे हत्थे चढ़ गया सैं। अब उन जालमों को भी सोचना चाहिए कि अगर माओ ने अगर इस तरह की आहें भरनी है उनके लिए और वो आहें पूरे पाकिस्तान में आम होनी है। आप देखें उस मां की एक आह जब सदाकत अब्बासी वापस जाके अपनी मां को मिल रहा है और उसकी मां अपनी पटवारी जबान में कह रही है कि बेटे तुम किन जालमों के हत्थे चढ़ गए थे। अब जालमों के हत्थे चढ़ गए थे का मतलब क्या है? हमें कहा जाता है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लें, हमें कहा जाता है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ना लें, हमें कहा जाता है कि अपने प्रोग्राम्स में आप DGISI का नाम ना लें, लेकिन उस मां को आप कैसे रोकोगे जो ऑन एयर कह रही है और वो फिर पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है कि बेटा तुम किन जालमों के हत्थे चढ़ गए थे। और उसका सबूत यह भी है कि मंसूर अली खान जो एक और एंकर पर्सन है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जिस दिन सदाकत अब्बासी साहब को अगवा किया गया, पहले अगवा बराए तावान होता था, अब अगवा बराए बयान होता है, जिस दिन उन्हें अगवा बराए बयान किया गया उससे एक दिन पहले, एग्जैक्ट 24 घंटे पहले, मंसूर अली खान कहते हैं मेरे टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के सदाकत अब्बासी इमरान खान को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान ने हमें कभी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करें या पाकिस्तान के फौज पर हमला करें या पाकिस्तान के जो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां अटैक करें। सदाकत अब्बासी 24 घंटे पहले ये बयान दे रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के, उसके बाद अगवा बराए बयान होते हैं और उसके बाद फिर बरामद होते हैं 24-25 दिन बाद, जब उनके ब्रेन वॉशिंग हो जाती है और उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। पता नहीं उन्हें कौन कौन सी ऑडियो दिखाई गई होंगी, पता नहीं कौन कौन सी।
आप फिक्र ना करें कि जितने लोग ये जितने लोग उल्टा काम करते हैं दुनिया मकाफात अमल हर एक के सामने इंशाल्लाह आएगा जरूर। झूठ झूठ है। आपने कहा कि सहाफत का जनाजा, मैं तो कहती हूँ वैल्यूज, इकदार, इखलाक, किरदार, सबका जनाजा। और मजे की बात यह, कौम में से कौम का जनाजा निकल गया। हर इंसान को अपनी पोजीशन का लालच है। बहुत शुक्रिया आपका, वी आर डेफिनेटली वेरी मच आउट ऑफ टाइम। जनाब फयाज विलाना साहब, क्विक 30-second मैसेज अगर कोई देना चाहते हैं।
सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी कौम को पेशेंटली देखना चाहिए और स्पेशली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पे इस वक्त फोकस ज्यादा इसलिए है। अभी हमारे दोस्त सीनियर साफी सोहेल बड़ाइच अमरीका कनाडा के दौरे पे आए हुए हैं, उन्होंने एक स्पीच की वहां अमेरिका में और उसको कंटेक्स्ट के हट के बयान किया गया, सिर्फ एक फिक्रा लेके पब्लिक कर दिया गया, हालांकि वो मजाक में बात कर रहे थे और वो कतन ऐसे नहीं है। मुझसे जब कभी भी किसी भी इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एंकर पर्सन, कोई ऐसा मीडिया पर्सन जिसको आप समझें कि वो न्यूट्रल मौकफ बयान कर सकता है या बयान करता है, तो मैंने सोहेल वड़ाइच का हमेशा नाम लिया और मैंने कहा कि सोहेल वड़ाइच के बारे में ये कह सकता हूं कि वो बंदा किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। अगर वो एक वक्त पे पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहा होता है या मुस्लिम लीग नून की तारीफ कर रहा होता है तो साथ वो पीपल्स पीटीआई की अपना बयान खत्म करने से पहले पहले वो पीटीआई की भी एक तारीफ कर देता है। अगर वो पीटीआई की तारीफ कर रहा होता है तो वो मुस्लिम लीग नून की भी कोई अच्छी बात बयान कर देता है। वो बैलेंस जर्नलिज्म करता है और बैलेंस जर्नलिस्ट है। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने, शहबाज गिल ने वहां से पहले उठाया मामला और कुछ लोग शहबाज गिल को आंखें बंद करके सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर हैं, वो एक पार्टी का मौकफ तो अच्छा बयान कर लेते हैं लेकिन वो पाकिस्तानियों का या ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौकफ अच्छी तरह बयान नहीं करते क्योंकि वो एक पार्टी के स्टैंड लीडर हैं। इसलिए उनकी बात पे ना जाएं। आप सोहेल वड़ाइच से लोग जो मिले हैं यहाँ या जिनका इंटरेक्शन हो रहा है उनसे, सोहेल वड़ाइच अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई भी है तो अब उन्हें माफ कर दिया जाए कि उन्होंने इतनी वजाहत कर दी इस बात को। वो कहते हैं इस हद तक उन्होंने वजाहत कर दी, उन्होंने कहा मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलामा इकबाल और कायद आजम के बराबर समझता हूं क्योंकि ये कायद आजम और इलामा इकबाल ही थे ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर जब वो लंदन में रह रहे थे और वहां उन्हें पाकिस्तान का आइडिया आया और वो पाकिस्तान गए, इंडिया गए वापस और वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान चलाई और पाकिस्तान हासिल किया। सोहेल वड़ाइच ने यहां तक कह दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का करिश्मा है पाकिस्तान का उसूल। अब तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को सोहेल वड़ाइच से राजी हो जाना चाहिए। सोहेल वड़ाइच साहब अभी कैलगरी में है, कल फिर वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, यहाँ फिर लोगों से उनके रबते होंगे और बातें होंगी। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से डिफरेंट बिहेव करना है। हमें वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं टिट फॉर टैट करने वाले, हम उस तरह हमें बिहेव नहीं करना। हमें बताना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में और पाकिस्तानियों में क्या फर्क है। हम जब ये कहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर ज्यादा है, हमने दुनिया देखी हुई है, हमें बिहेव भी बेटर करना है।
आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं, दिन में ख्वाब देख रहे हैं। ये जितने पाकिस्तानी मेरे समेत यहाँ हैं या वहाँ हैं या वहाँ हैं, उसी फैक्ट्री की पैदावार है, वही मॉरल फाइबर लेके यहाँ आए हुए हैं। हमारी इश्यूज पे बात नहीं होती, हम तो सिर्फ जाती दुश्मनी के ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फयाज भाई, फयाज बेराना साहब का बहुत शुक्रिया। एक इन्फॉर्मेशन, वी आर डेफिनेटली वेरी मच आउट ऑफ टाइम। पाकिस्तान के आउटलाइनर ये साहब डॉक्टर जकी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक प्रोग्राम होने जा रहा है अक्टूबर 23 तारीख को। अब हूज डॉक्टर जकी? 1960 में वो, अब डॉक्टर जकी कहते हैं कि 1960 में पाकिस्तान वो सीन एज वन ऑफ द फास्टेस्ट, 1960 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, मूविंग क्विकली इनटू द मिडिल इनकम कंट्री स्टेटस व्हाइल अदर्स इन साउथ एशिया स्ट्रगल। टुडे मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज हैव लेट पाकिस्तान बिहाइंड। यानी 1960 में पाकिस्तान सबसे आगे था मगर आज जो है वो पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया। क्या वजह, इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं डॉक्टर जकी। डॉक्टर जकी जो हैं प्रोफेसर जकी, प्रोफेसर अकबर जैदी, अकबर जैदी इनका नाम है, अकबर जैदी, इन्होंने पीएचडी की हुई है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची। डॉक्टर अकबर जैदी पीएचडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कराची, ही इज हियर इन टोरंटो। 23 अक्टूबर को ये है। इस सिलसिले में अगर आप इसमें जो एवरीबडी इज़ वेलकम, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यू मस्ट कम ज्वाइन। अब यू मस्ट कम ज्वाइन तो कैसे करें ये मैं आपको कल बताऊंगी. टॉप ऑफ द आवर विल कम बैक.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL बिकॉज वी केयर.
ब्रैम्पटन ऑन स्टेज 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन पर अहद रजानीर को हैमलेट के किरदार में देखकर खुश और वेलकम करते हैं. हैमलेट जो आजकल के दौर के लिए गजबनाक तेज रफ्तार इंतकाम और दागदार मोहब्बत की कहानी है. क्या आप हमारे डेनमार्क के शहजादे के साथ बाइज्जत खुशहाली पागलपन के दरमियान लाइन पर चलने की हिम्मत करते हैं? ये तब्दीली सिर्फ सच्चा सानिया ही ला सकता है. देखना मत भूलिएगा हैमलेट 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन में. सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton-onstage.ca.
जस्टिन ट्रूडो तुहाडे आंढ गुआंढ च क्रैक अते कोकेन दे कारोबार नूं कानूनी बना रहे हन. इसे करके तुहानूं अपने आले दुआले जुर्म अते मुजरम ते चोरी चकारी नजर आ रही है. पीयर पोलिवर इन्हां सारे नशियां दी फरोख्त ते पाबंदी लाउणगे अते नशियां वाले मरीजां दे इलाज दा इंतजाम करनगे ते दोषियां नूं जेल भेजणगे. दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाई पीयर पोलिवर एंड कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵੇਲੇ $4,250 ਦੇ ਰਿਬੇਟਸ ਤਮਾਮ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂ forddealers.ca.
रियल एस्टेट दी दुनिया विच थोड़ी कामयाबी एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी जिथे तुसी 1.5 लाख तो 2 लाख साल दा कमा सकदे हो. इस तो अलावा फ्री बायर एंड सेलर लीड्स, वीआईपी एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वन ऑन वन सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप, टीच एंड ट्रेन प्रोग्राम, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न ऑफिस विद प्राइवेट रूम, इन हाउस मॉर्गेज एंड लॉयर्स टीम, इन हाउस प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. फिर देर का दी आओ ते ज्वाइन करो एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी या कॉल करो 905-890-1300 या विजिट करो ehrb.ca.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए. आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और 1 घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं. राजा मुदस्सिर 6472903773. ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
खूबसूरती वधाउण लई, उमर छपाउण लई देसी कैनेडियन नैचुरल हेयर कलर शैम्पू वाल काले जां डार्क ब्राउन करन दे लई 7 मिंट लगा के इंतजार करो. तुहाडे वाल लिशकां मारनगे. कलर 20 तों 25 दिनां तक खराब नहीं होएगा ते ना ही दीवारां ते बाथटब खराब करेगा. अपने नेडली ब्रांच तों कलर अते कैनेडियन लोकल फार्म तों तैयार कीता हनी खरीदण लई वैबसाइट desicanadian.com ते जाओ जां रामा गिल नूं फोन करो 519-569-9282.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान. 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम. हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें. रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से. नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659. लाइसेंस नंबर 10530. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गीत और बीच बीच में गीत नकमे भी होने चाहिए, जहां इतनी सारी दुनिया की खबरें होती हैं, खुश खबरें होती हैं तो थोड़ा थोड़ा चले एंटरटेनमेंट न्यूज भी होती है। नाजिया हसन वन एंड ओनली, उनकी आवाज में ये गीत और बहुत सारे गीत नकमे भी होंगे, लेकिन साथ साथ एक मुलाकात, और ये मुलाकात जो है ये है अली यजदानी। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मॉर्गेज की दुनिया से देते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। क्या चल रहा है मॉर्गेज से रिलेटेड, अकाल मॉर्गेज से आपका ताल्लुक है, और सारी डिटेल भी इनसे लेते हैं। तो सबसे पहले वेलकम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसी तबीयत?
बिल्कुल सब ठीक ठाक है जी। जब थर्सडे आ जाता है तो तबीयत वैसे ही बेहतर हो जाती है, क्योंकि बस फिर आगे वीकेंड खड़ा है। लेकिन भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मॉर्गेज चाहिए, रिन्यूअल आ जाता है, क्या बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, और आपको भी कॉल्स आती रहती होंगी आजकल के जो हालात हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी अकाल मॉर्गेजेस के बारे में, और आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं।
चलो थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिया कॉल पे वंस अगेन। अकाल मॉर्गेजेस पिछले 23 साल से एक बहुत बड़ा नाम मॉर्गेजेस की दुनिया में, मॉर्गेजेस खैर और भी बहुत हैं, ब्रोकरेजेस भी बहुत हैं, लेकिन व्हाट मेक्स अकाल मॉर्गेजेस डिफरेंट के हम वी वर्क ऑन प्रिंसिपल्स, वी वर्क ऑन एथिक्स, वी वर्क ऑन मैनर। एक हमारा बहुत असूल है जिसके ऊपर हम पहले दिन से कायम दायम है कि व्हेन वी से यस वी स्टैंड बिहाइंड आवर प्रॉमिस। एक दफा आपके डॉक्यूमेंट्स देख लें, एक दफा आपके पेपर वर्क हम देख लें, एक दफा आपको हम हां कर दें, फिर हम अपनी कमिटमेंट से, अपनी हां से पीछे नहीं हटते। अब हम वो कैसे करते हैं, यहीं पर हमारी एक्सपर्टीज आती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना।
जी।
पिछले 5 साल से नंबर 1 इन ऑन्टेरियो, पिछले 2-3 साल से नंबर 2 ऑल ओवर कैनेडा। मैं खुद अल्लाह मियां का लाख लाख शुक्र, आई हैव जस्ट बिन रिवॉर्डेड एंड रिकग्नाइज कि ऑल ओवर कैनेडा टॉप 10% जो मॉर्गेज प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर। सो कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से हमें ये मकाम हासिल है, जिसकी वजह से हम इस तरह अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की हेल्प आउट करते हैं। अपने काम करना है प्रिंसिपल्स पे करना है, एथिक्स पे करना है, सच पे करना है, झूठ नहीं बोलना, लारे नहीं लगाने,
बहुत इंपॉर्टेंट।
मैं जो भी काम करता हूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होता है, साइनिंग होते हैं, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपने क्लाइंट्स को बिठा के, और आई ऑलवेज ट्रीट माई क्लाइंट्स बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह, जैसे कि मेरा अपना बहन भाई होगा। एक एक नुक्ता, एक एक लाइन मेरा फर्ज है, मेरी ऑब्लिगेशन है उनको समझाना।
लेकिन एक बात, ये जो होती है आपकी कंसल्टेशन जो होती है, इज इट लाइक इसकी चार्जेज हैं? क्योंकि लोगों को ये भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं। जी
नो, माई एडवाइस, माई कंसल्टेशन इज फ्री।
ओके
ठीक है। एंड जो मॉर्गेज एजेंट या मॉर्गेज ब्रोकर इस तरह नहीं करेगा, एक एक लाइन बैठ के एक एक काम नहीं समझाएगा, आई फील कि ये उस होम ओनर के साथ जो जिसकी अपने खून पसीने की कमाई से वो घर खड़ा है, वो घोंसला है बच्चों का, वो छत है अपने खानदान की, उसके साथ, उन होम ओनर्स के साथ ये एक झूठ है, दगाबाजी है, चीट करने वाली बात है। जब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा तो मैं फिर कोई चीज क्यों छुपाऊं? सब कुछ पेपर्स में होता है कि राधर दैन की मैं उनको बोलूं चलो जल्दी जल्दी, और बहुत लोग करते हैं, आई एम सॉरी टू से, कुछ एजेंट्स हैं ब्रोकर जो कि फॉरन साइन कराओ जी,
बस अपना काम नहीं, फंसाने वाली बात होती है जी।
सो मेरा ये फर्ज है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं उनको एक एक सवाल का जवाब दूं। अब आजकल स्पेशली जैसे एनवायरमेंट हुई हुई है कि हाई रेट्स हैं, लोगों की जो डेट, जो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन है वो बढ़ गई है,
बिल्कुल।
तो बजाय इसके कि आप 4-5-6 डिफरेंट बिल्स दें, 1899, 2199, 1699, वट एवर, तो वाई नॉट आप एक अपना ये सारा डेट जो है कंसोलिडेट करके, अगर आप 21% आप नॉर्मली एवरेज जो क्रेडिट कार्ड पे होता है वो 20-21% होता है, राइट? अगर आप उसको आधा करके 10% पे भी आपकी सारी पेमेंट आ जाती,
अच्छा,
तो ही आपके ही पैसे बच रहे हैं ना।
और
जहां पर मेरा, अगेन दिस इज माय ऑब्लिगेशन, दिस इज माय ड्यूटी, कि अगर आपका $100 भी महीने का बच रहा है, साल का $1200 बनता है, तो वो $1200 आपकी जेब में क्यों ना जाए, क्यों बैंक की जेब में जाए, क्यों किसी फजूल के लेंडर की जेब में जाए?
क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो दिस इज हाउ आई वर्क, मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप ईमेल 647-510-9494, 647-510-9494,
और आपकी एक खासियत ये भी है कि जब भी आपको कॉल किया आपने फौरन फोन उठाया और मैसेज आप फौरन करते हैं, तो डेफिनेटली जो भी सर्विसेज चाहिए मॉर्गेज की, चाहे आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, रिन्यूअल आ जाता है, रीफाइनेंस करवाना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप नए आए हैं कनाडा में, यानी कोई भी आपके पास सिनेरियो हो, तो आप बस नाम याद रखिएगा, मॉर्गेज लेनी हो तो अली यजदानी से, अकाल मॉर्गेज से आपका ताल्लुक है, और आप अपना नंबर खुद दीजिएगा और एंड में अगर कोई मैसेज दोबारा से कोई प्रोग्राम यानी अपना कोई मैसेज देना हो तो जरूर
जी। नंबर कॉन्टैक्ट मेरा वही, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वेरी इजी नंबर 6475109494 6475109494। बात कीजिए, आपके पास रिन्यूअल्स आ रहे हैं, रिन्यूअल्स भी अब जो आ रहे हैं वो ऑब्वियसली काफी बढ़ के आ रही हैं, अपने रिन्यूअल आपको बैंक भेजता है, उसको रखिए अपने पास, अपने ऑप्शंस पे बात कीजिए। 8 out of 10 times आई हैव बीन एबल टू गिव माई क्लाइंट्स अ बेटर ऑप्शन। आप सिर्फ बात कर रहे हैं ना, बात करने में तो आपकी कोई फीस नहीं लग रही, बात करने में तो आपको कुछ नहीं है, बात कीजिए अपनी ऑप्शन पे बात कीजिए एंड देन सी के हाउ थिंग्स आर गोइंग।
बिल्कुल, एक दफा जरूर बात कीजिएगा और अपनी प्री अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, लाइसेंस मॉर्गेज ब्रोकर अली यजदानी 6475109494 6475109494 आपका नंबर है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, ध्यान रखिए अपना, अल्लाह
हाफिज़। मोस्ट वेलकम जी, और ये तो थी एक मुलाकात, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई हालात आजकल की जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो काफी आप देख लें, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे जाती जाती है। अब उम्र तो तेजी से बढ़ती जा रही है, अब वो क्या फाइनेंशियल डिसीजन हमें करने चाहिए जिससे हम अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। यहां हम सात समुन्दर पार जो है वो छोड़ के आए हुए हैं और दिन रात मेहनत भी करते हैं, तो क्या तरीके हो सकते हैं कि हम अपने आने वाले वक्त को सिक्योर, यानी जो अपनी जो रिटायरमेंट एज आ जाती है, या फिर जो अपने फाइनेंसिस को किस तरह से हम, यानी आजकल सेविंग तो बहुत मुश्किल बात है, यानी एंड टू एंड चलना ही आजकल आप देख लीजिए जो हालात चल रहे हैं, तो सेविंग किस तरह करनी है, तो वो तमाम तरीकेकार जो है वो अदनान अलवी से आप रब्ता कर सकते हैं। आज हमारे साथ होते हैं अदनान अलवी, लेकिन किसी वजूहत की बना पर आज नहीं है। उनका पैगाम आप तक पहुंचा देते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दिन रात जो मेहनत करते हैं उसमें से मस्ट है कि आप अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा जरूर सेव करें। हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। प्रेजिडेंट हैं लाइफ टाइम ग्रुप के अदनान अलवी, 416-301-0249 अदनान अलवी का टेलीफोन नंबर है, और उनसे रब्ता करके आप एडवाइस जरूर लीजिएगा। तो चलें एक कुछ कमर्शियल की तरफ चलते हैं और फिर शाजिया जी और आमिर भाई इधर आ जाएंगे, आपको दुनिया भर की सैर कराएंगे। मुझे दीजिएगा यहीं इजाजत, इंशाल्लाह होगी कल फिर मुलाकात। टॉप ऑफ दिया कुछ एडवर्टाइजमेंट और वापस आते हैं।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडीज और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन जीटीए, तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
भाई सस्ता लाला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला।
ओहो सरला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट दाला सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप, नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे प्लेटां बाटियां सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां Ontario which 9 locations which on jithe marzi aa jao।
डॉक्टर मजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट 9054578661।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज़ देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था।
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ शाहीन, शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसीलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। khanimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
ग्रिल इन द हट मिसिसागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हट।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
खुशखबरी, 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 ब्रैम्पटन के बाद ग्रिल एंड चिक की दूसरी लोकेशन खुल चुकी है आपके शहर मिसिसागा में, 3525 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 105, मिसिसागा। डिलिशियस एंड हेल्थी ग्रिल एंड रोटिसरी चिकन सैंडविचेस, बर्गर्स, विंग्स, स्क्यूअर्स, पॉपकॉर्न चिकन, सैलड, गार्लिक ब्रेड एंड स्वीट डिशेस। ग्रिल एंड चिक मिसिसागा, 9056062345। विजिट एट grillandchick.com।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522, 302-2522।
जी तमाम सामाइन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वजन बर्दाश्त कर लेना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलानी पड़ रही है। तो आप सबको जो है आमिर अहमद वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी साज़ो आवाज़ 770 AM डायल पर आप सुन रहे हैं आमिर अहमद को और मेरे साथ آج کوئی نہیں جناب, اکیلا میں ہی نیوز سنا دوں گا, کوئی ٹینشن ہی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں 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 بھائی جان, معاف کرتے ہیں, بالکل ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, مسکراہٹ آپ کو پیچھے سے آ رہی ہوں گی. میں تو نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کلینک کھلتا ہے تو کمپاؤنڈر پہلے آتا ہے, پھر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, تو کمپاؤنڈر آ گیا, ابھی ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نہیں آپ نے ڈاکٹر کا نام پورا لینا ہے, ڈاکٹر شازیہ ملک آپ نے کہنا ہے.
ڈاکٹر شازیہ ملک,
ڈاکٹر شازیہ ملک,
ایم فل پی ایچ ڈی ایم بی اے اسٹینفورڈ,
ساری جیلی ڈگری
ڈگری ہوتی ہے,
بڑا
ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ جو ہے پریشان ہو, جی ڈگری میری ہارورڈ کی ہے, ادھر کی ہے, پیشاب لتی پٹائی کی ہے,
ہے ہی نہیں, گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے,
ڈگری ڈگری ہے,
گھر کے ٹھپے لگائے ہیں.
ہاں تو وہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ
نکلی اصلی کچھ نہیں ہوتا,
اصلی کا کیس ہی ختم کر
کے ہم نے.
ہم آپ کو پتا جب ہم آ گئے میدان میں تو پھر کہیں نہیں جانے کا.
اچھا اچھا,
کیا ہو رہا ہے جناب؟
ہو یہ رہا ہے کہ کل ہمارا پروگرام وینا ملک صاحبہ نے سنا ہے اور انہوں نے کہا آپ نے جس کو انوائٹ دیا وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے میرے لیے. جی تو اس میں نے دیکھو عامر, میرا کام ہے دنیا کو خوش کرنا ہے, تو میں نے ان کی خوشی کے لیے میں نے آپ کو وہ میسج دیا تاکہ آپ بھی ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں. یہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے ان کے ساتھ خوشی میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہے, دس از انٹائرلی اپ ٹو یو, نو پرابلم.
لیکن ایک ہوتا ہے نا انسان کو, مطلب ایک ہوتا ہے کہ یار مانا کہ اوپر جا کے حساب کتاب ہوگا, مطلب آپ چاہتی ہیں میرا حساب کتاب یہی ہو جائے.
ہاں یہاں پہ ہوئے گا تو اچھے رہو گے, اوپر اللہ تمہیں ڈائریکٹ جنت میں بھیجے گا.
یہاں تو یہ وینا والے جو آپ چکر بتا رہی ہیں حالات تو یہاں تو طے ہو جائیں گے.
اچھا اچھا,
لیکن کچھ جو وینا گھر پہ ہے پھر وہ والے حالات تو اوپر جا کے پتا کریں گے نا.
نہیں نہیں وہ حالات اوپر نہیں ہوئیں گے, کیونکہ تمہارے ساتھ دونوں وینا ہیں, وہ کچھ کر دیں گی اسی دنیا میں کہ اوپر تمہیں
ڈائریکٹ انٹری,
ڈائریکٹ تمہاری جنت میں, ہاں ڈائریکٹ تمہاری فلائٹ ہے. اس لیے کیونکہ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کو بھی اس معصوم کو آپ, اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لینا, اس کا حساب دو عورتوں نے زمین پہ لے لیا.
نہیں 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 تین,
ہاں تین,
ایک کے ساتھ نیوز کرتا ہوں.
یہ تو بہت ہی بڑا تمہارے پہ امتحان ہے نا, یہ تو دیکھو برا وقت جو ہے
دھرتی پہ نا, اس پوری دھرتی پہ دو ہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نیوز کرتے ہیں, ایک میرے استاد جو آج کل ہے نہیں,
گرو جی,
اور ایک میں, تیسرا کو مائک کا لال ہی نہیں ہے,
نہیں
سب پی لیں
پی لیں.
ہمت چاہیے ہوتی ہے نا اس کے لیے,
بالکل
خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, تو ماجد بھائی اور میرے اندر ہی ہے اور کسی کے اندر نہیں.
اور آج تو آپ ویسے بھی زیلنسکی بن کے آئے ہوئے ہیں, تو دنیا تو آپ سے پیار میں ڈوبے جا رہی ہے, مرے جا رہی ہے.
آج صبح سے میں ٹینک چلا رہا ہوں, گولہ باری کر رہا ہوں,
بالکل بالکل. اور آج تمہارے پاس جو ہے امریکہ بھیج رہا ہے چیک تمہیں,
دیکھیں گے نہیں بتانی ہوتی ہے. استاد نے کہا ہے کہ لفافوں کی بات آن ایئر نہیں.
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی نہیں. اچھا جی چلو ٹھیک ہے جی, اچھا جی
نیوز شروع کریں.
ہاں چلو نیوز شروع کرتے ہیں جناب. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی ہمارے جو اکراز والے ہیں, اور جو کہ ہمارا بہت ہی اسپیشل جو ہم سیگمنٹ اب ہم نے ورلڈ کپ کے لیے شروع کیا ہے, چھ سے ساڑھے چھ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے, وہ شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ آپ کو آفر کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو کوئی بھی سروسز چاہیے تو آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ سمپل ورڈز میں اس کو تو وہ حلال فائنینسنگ کہتے ہیں, لیکن اصل میں جو پراپر ورڈ ہے دیٹ از شریعہ کمپلائنٹ سروسز. تو اگر آپ کو شریعہ کمپلائنٹ سروسز چاہیے اکراز والوں کے ساتھ, اکراز ڈاٹ کام پہ آپ جائیں, آپ کو ساری وہاں پہ نظر آئیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ اچھا کھانا پینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز جائیں نانن کبو پہ. نانن کبو پہ آپ کو بہت زبردست اچھے ہیلدی کھانے ملتے ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں اور انجوائے کا مزہ لیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھے اپلائنسز چاہیے تو سلطان بھائی کے پاس برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنس پہ چاہیں, 801 بوے ڈرائیو ویسٹ پہ ہوتے ہیں. سلطان بھائی کو فون کر لیں اور کر لیں آپ ان کے ساتھ ایک وہ بنا لیں اپوائنٹمنٹ اور جائیں. اچھا جناب, پہلی سب سے پہلی ہماری جو خبر ہے جو ہم نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ فارن افیئرس کینیڈا نے کہا تھا کہ ہم اپنے بندے جو ہمارے پھنسے ہوئے ہیں اسرائیل اور غازہ میں اور جگہ, تو ان کو ہم لے کر آ رہے ہیں. تو فرسٹ کینیڈین آرمڈ فورسز کی جو ایویکیویشن فلائٹ ہے اس نے ایئر لفٹ کیا ہے کینیڈین جو سٹیزنز اور فیملیز ہیں جو کہ اسرائیل کے اندر تھیں, اور اس کے اوپر تقریباً جو ہے پہلی فلائٹ میں 130 پیسنجرز تھے. یہ ساری کی ڈیٹیلز جو ہے آج ڈیفنس منسٹر بل بلیئر صاحب نے بتائی ہے اپنے ایکس کے اوپر, اور انہوں نے کہا جی کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائرلیسلی کام کر رہی ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک اور غازہ میں جو بھی کوئی پھنسے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ لائیں. یہ لوگ جو ہے انہوں نے ڈپارٹ کیا تھا بن گورین ایئرپورٹ اسرائیل میں جو تل اویو میں ہے وہاں سے, اور 2 ملٹری CC-150 ایئر بس پولارس جو ہیں اب ان کو لائیں گے وہاں پہ ایتھنس کے اندر, جو کہ ظاہر ہے گریس تھرڈ جو سیف کنٹری جو ہوتا ہے اس کے اندر آیا جاتا ہے, تو وہاں پہ لا رہے ہیں. यहाँ पे जितने लोग हैं उनको फैमिलीज के साथ लाया जा रहा है, उनके स्पाउसेज और किड्स के साथ, पीआर जो हैं जिनके ड्यूअल नेशनलिटीज हैं, जो के हैं जिनको के वल्नरेबल समझा जा रहा है, उन सबको लाया जाएगा। तो ये एक दिन पहले भी कहा गया था कि हम तकरीबन 3 फ्लाइट्स पर डे चलाएंगे, कनाडा ने कहा था, और उसके अंदर मैक्सिमम 150 पर्सनल पर फ्लाइट होगा। इसके लिए वो फ्लाइट्स ये जो हैं डिपार्चर फ्लाइट्स, इसके लिए तो कनेडियन गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही है जो कि जा रही हैं इसराइल से एथेंस में, लेकिन वो कहते हैं जी कि आपको ऑनवर्ड ट्रेवल्स जो आपको करना है एथेंस से आगे, आपको जहां पे भी जाना है और जो अकोमोडेशन के आपके एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए पेमेंट आप खुद करेंगे। रॉयटर्स की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक कनाडा की सेनेट की जो के जो स्पीकर थे रेमंड गैंग, उन्होंने जाना था वहां पे इंडिया में जो G20 की मीटिंग हो रही है उसके लिए, लेकिन अब वो वहां पे हिंदुस्तान के अंदर G20 की मीटिंग अटेंड करने नहीं जा रहे हैं। आपको पता ही है कि इंडिया के पास ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी है G20 की, और ये अब एक्सपायर हो जाएगी नवंबर में, तो उससे पहले ये कह रहे थे कि हम G20 की ये एक सबमिट कर लें। इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरीन दैम बागची, उन्होंने कहा जी कि हमने तो तमाम मेंबर्स को बुलाया था और अगर कोई नहीं आ रहा है तो ये उनका अपना खुद का डिसीजन है। आपको पता ही है कि कनाडा इंडिया के बीच में काफी जो है वो अभी टेंशन चल रही है। कनेडियन सेनेट ने इसके ऊपर कोई भी रिस्पांस जो है वो नहीं दिया इस खबर के ऊपर। इंडियन मीडिया जो है उसने इससे पहले कहा था कि इंडिया के लोअर हाउस के स्पीकर ने हमें कहा था कि इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सेनेट स्पीकर। बहरहाल अभी तक इसकी कोई भी खबर जो है वो नहीं आई है। टोरंटो के पुलिस चीफ जो है मायरॉन डेमक्यू, उन्होंने अब कहा है कि जी चूंकि ये हमास का और इसराइल की जो वॉर है इसके अंदर बहुत ज्यादा कम्युनिटी का खासतौर पे जो ज्यूइश कम्युनिटी है और पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का कंसर्न बढ़ गया, तो आप अपने इलाकों में बहुत ज्यादा हाई पुलिस प्रेजेंस जो है वो देख सकते हैं। ये प्रेजेंस अराउंड स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के पास ज्यादा की जाएगी। इसके अलावा जो कमांड पोस्ट जहां पे कि हर कोई जाके अपने सिक्योरिटी कंसर्न बता सकता है, ज्यादातर खोली जा रही हैं बैथर्ड्स एंड लॉरेंस, बैथर्ड्स एंड ग्लेन केरन, इस इन एरियाज के अंदर भी। तो उन्होंने कहा जी के आप जो हैं अगर आपको लगता है कि आपका खतरा है आपको सेफ्टी को, तो आप यहां पे ये जो हमने बनाए हैं सेंटर्स इसमें आके कमांड पोस्ट उधर आके आप बात कर सकते हैं। ऑन्टारियो गवर्नमेंट जो है वो अब इट विल गो अहेड विद लेजिस्लेशन ऑन ग्रीन बेल्ट बाउंड्रीज। आपको पता ही है कि डग फोर्ड साहब की गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा मुश्किलों का उसको सामना है, तो उन्होंने RCMP जो है वो अब लॉन्च करने लगी है एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर कि ये ओरिजिनल चेंजेस जो थी वो क्यों किए गए थे। इन्होंने कहा था कि जी हम जो लेजिस्लेशन लाएंगे वो अक्टूबर 16 को लाएंगे जैसे कि प्लान था, और बिल जो है उसको रिटर्न किया जाएगा। ये जो 15 साइट्स की गई थी पिन पॉइंट के, इसको ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जो है वो हाउसिंग बनाई जाएगी, हाउसिंग कॉलोनीज, ताकि हाउसिंग की जो शॉर्टेज है उसको खत्म किया जाए और फिर कहीं और हम जो है ग्रीन बेल्ट्स दे देंगे। लेकिन उसमें आपको पता है बहुत सारे स्कैंडल सामने आ गए थे, इसके बारे में भी कुछ ही पता है कि ये बिल जो है वो क्या कहेगा। लेकिन हाउसिंग मिनिस्टर पॉल क्लैंट्रा जो है उन्होंने कहा जी कि हम इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो जो कि पहले नहीं थी वो ऐड कर रहे हैं। ये जो 15 ग्रीन बेल्ट साइट्स हैं इनके ऊपर RCMP की सेंसिटिव एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट जो है इन्वेस्टिगेशन बिठाएगी, और ये पब्लिक के साथ बिल्कुल इसकी कोई भी चीज शेयर नहीं की जाएगी। और इससे लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फोर्ड गवर्नमेंट जो है उसकी बदबख्तियां और बढ़ेंगी, जाहिर है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब फोर्ड साहब ने पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया तो सब कुछ कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी अब ये फिर से अब इन्वेस्टिगेशन खुलेगी तो PC गवर्नमेंट पे उंगलियां उठेंगी। इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और सऊदी क्राउन प्रिंस MBS जो हैं उनके बीच में अब बातचीत शुरू हो गई है। ये जो इसराइल और हमास का सारा मिडल ईस्ट के अंदर काम शुरू हो गया है, आज जो है फर्स्ट कॉल इनके बीच में रियाद और तेहरान के बीच में हुई थी, ताकि जो है इस बात की जा चुकी है। आपको पता ही है कि दोनों के बीच में टाइज जो है वो रिस्टोर हो गए, क्योंकि जो किंगडम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो चाह रहा है कि अब मुस्लिम कंट्रीज के साथ तमाम के साथ जो है दोस्ती बनाई जाए। इन दोनों ने जाहिर है कि जो इरानियन प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल अफेयर्स के एड है मोहम्मद जमशीदी, उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा कि इन दोनों ने जो ये वॉर क्राइम्स हो रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर उनके खिलाफ जो ये सारी हो रही हैं ज्यादतियां उसके ऊपर बात की, इस्लामिक यूनिटी के ऊपर बात की, क्योंकि ये समझते हैं कि इसराइलीज जो हैं वो बहुत ज्यादा क्राइम्स कर रहे हैं और US ने जो ग्रीन लाइट दी हुई है इनको उसकी वजह से इनकी जो جو ڈسٹرکٹیو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. سعودی نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اس کے اصول کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ غزہ کے اندر بہت زیادہ ہیومینیٹیرین سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس کے اندر مستقل طور پہ سویلینز کو مارا جا رہا ہے. محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ میکسیمم ایفرٹس جو ہے انگیج کرے گا ایٹ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل لیول تاکہ یہ ان کے بیچ میں جو بہت زیادہ یہ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے اسکلیشن کر گئی ہے اس کو واپس لایا جا سکے. وائٹ ہاؤس جو ہے جی اس نے واک بیک کیا ہے بائیڈن صاحب نے جو بیان دیا تھا پیلسٹائن اور حماس کے اوپر, جس میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میں نے پکچرز دیکھی ہیں بی ہیڈڈ کڈز کی جو کہ حماس نے کی ہیں اسرائیل میں اور یہ بہت ہی زیادہ گروس ہیں اور یہ بہت بڑا جو ہے یہ مطلب بڑا بروٹل ایکٹ ہے ان کا. اس کے اوپر وائٹ ہاؤس نے کہا جی کہ بائیڈن صاحب نے یہ جو ساری باتیں کہی تھیں, یہ جو امیجز آف میوٹیلیٹڈ کڈز دیکھے تھے وہ جو جوش لیڈرز کے ساتھ مل رہے تھے تب انہوں نے یہ بات کہی تھی اور ان کو یہ ساری خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پہ ملی تھیں. اور یہ جو کلیم تھے ایک نکول زیڈک ایک رپورٹر ہیں تل اویو بیسڈ نیوز چینل 124 کی i24 کی, اس نے یہ ساری باتیں کی تھیں اور اس کے بعد پھر بائیڈن صاحب نے یہ باتیں کی. لیکن جس وقت واشنگٹن پوسٹ نے یہ سوال کیا کہ اس کے اندر اوتھینٹسٹی کتنی ہے تو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے کہا جی کہ بائیڈن صاحب کے جو کامنٹس تھے وہ نیوز رپورٹس اور اسرائیلی گورنمنٹ کے جو کلیمز تھے ان کے اوپر بیس تھے, لیکن انہوں نے خود سے یہ سب تصویریں نہیں دیکھی ہیں اور یہ رپورٹس کو انڈیپینڈنٹلی کنفرم نہیں کیا ہے. تو ان کے جو کامنٹس تھے وہ کامنٹس بیس تھے نتن یاہو صاحب کے جو سپوکس پرسن اور میڈیا رپورٹس تھیں اسرائیل کی اس کے اوپر تھا. بائیڈن صاحب نے جس وقت یہ باتیں کہی تھیں کہ حماس اتنا ظلم کر رہا ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی لوگوں کے اور بچوں کے سر کاٹ رہا ہے اور ان کی میوٹیلیٹ کر رہا ہے باڈیز, تو اس چیز نے ساری دنیا کے اندر فرنٹ پیج نیوز یہ بنائی تھی. اسرائیلی آرمی نے بھی اس کے جو رپورٹ ہے اس کو کنفرم نہیں کیا تھا کہ حماس نے ایسا کچھ کیا ہے, اور حماس نے تو ظاہر ہے کہ اس کو بالکل ہی نکار دیا تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا. تو آپ سوچیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ ہے اور سوشل میڈیا کی خبروں کے اوپر جو ہے وہ بلیو کر رہا ہے تو کتنا یہ خطرناک سوشل میڈیا ہو سکتا ہے, وچ از اسی لیے سوشل میڈیا سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں اینتھنی بلنکن صاحب جی وہ اب اسرائیل آج پہنچے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کو کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بڑی انہوں نے ان کو جو ہے ہی ہیز ایکسپریسڈ اسٹرانگ سالیڈیرٹی ود دا اسرائیلی لیڈرشپ, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پیلسٹینین سویلینز ہیں جن کو کہ آپ اسرائیل بام کر رہے ہیں غزہ کے اندر ان سے بھی آپ ریسٹرین تھوڑا شو کریں. ان کی ملاقات جو ہے وہ بنجمن نتن یاہو سے جو ہے وہ بھی ہوئی ہے تل اویو کے اندر, اور نتن یاہو صاحب نے ان کی جو یہ جو وزٹ ہے بلنکن صاحب کی اس کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی سپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بلنکن صاحب نے جرنلسٹوں کو بولتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پہ جو ہے سیکرٹری آف سٹیٹ کے طور پہ ہی صرف نہیں آ رہا ہوں بلکہ ایک جیو کے طور پہ بھی آ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری فیملی جو ہے اس نے ہولوکاسٹ کو کیسے سروائیو کیا تھا, اور یہ جو ہے میں یہ جو آپ لوگوں کی تکلیف ہے پرسنل لیول کے اوپر سوچ سکتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ حماس جو میسیکر کر رہا ہے وہ کتنا زیادہ دکھ دینے والا اور خطرناک ہے, اور لیکن ہم جیسی ڈیموکریسیز جو ہیں یعنی کہ یو ایس اے اور اسرائیل ان کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے ٹیررسٹوں کے بیچ میں اور سویلینز کو ہارم نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے بائیڈن صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا غصہ اور فرسٹریشن ہے لیکن جو رولز آف وار ہیں اس کے انڈر آپ کام کریں. اس کے بعد جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ صاحب جو ہیں دوحہ جائیں گے قطر میں لیڈرز کے ساتھ بات کرنے کے لیے, پھر سعودی عربیہ اور باقی دوسرے لیڈرز کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. بھئی جو ہے شاباش ہے آپ لوگوں کو کہ پچھلے 50 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے پیلسٹینینز کے اوپر وہ نہیں آپ کو نظر آ رہا, اور اچانک سے آپ کو جو ہے وہ نظر آ گیا ہے کہ جی یہاں پہ اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے. بھئی کیا بات ہے, واہ بھئی واہ, سلام ہے آپ کی ہیومینیٹیرین جو آپ کی اپروچ ہے اس کو, ویری گڈ. ہیلتھ اتارٹیز جو ہیں غزہ اسٹرپ کے اندر اور میڈیکل آرگنائزیشن جو ہیں انہوں نے بھی ایکیوز کیا ہے آج اسرائیل کو کہ اسرائیل نے تو اب حد ہی کر دی ہے کہ ایمبولینسز کو اور ہیلتھ فیسلٹیز تک کو جو بیسیجڈ انکلیوز میں ہیں ان کو بوم کر رہے ہیں, وچ از اے کمپلیٹ بریچ آف انٹرنیشنل رولز, اور یہ جو ہیں یہ انڈر وار کرائمز آتا ہے. پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے کنڈیم کیا ہے ان کی, اور وہ کہتے ہیں جی یہ انٹینشنل جو ہے یہ ٹارگیٹنگ جو ہے ان کی, ٹارگیٹ کر رہے ہیں میڈیکل ٹیمز کو اور ہاسپٹلز کو, جس کے اندر چار پیرامیڈکس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے, تاکہ یہاں پہ جو بچارے جن کو کہ میڈیکل نیڈز ہیں جن کی, ان کو دیکھا نہ جا سکے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے خاص طور پہ, پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کہتی ہے کہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا اسرائیل نے میڈیکل پرسنز کو, اور یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور ہیومینٹی کے اگینسٹ ہے, اور ان کو وار کرائمز کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اور ان کے اوپر انویسٹیگیشن بٹھانی چاہیے تاکہ جو وکٹمز ہیں ان کو جسٹس دی جا سکے. ہیلتھ منسٹری جو غازہ کے اندر ہے اس نے بھی ڈیناؤنس کیا ہے ڈائریکٹ اینڈ سسٹمیٹک اٹیکس آن ایمبولینسز, اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو ٹارگیٹ کرنا انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں وہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور یہ جو اس طرح کے سروسز ہیں ان کو, آرم کانفلکٹس بے شک چل رہے ہوتے ہیں, ان کو سیف رکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر اٹیکس نہیں کیے جاتے ہیں. دس پارٹ آف دا پروگرام جناب از بینگ براٹ ٹو یو بائی راجہ بادشاہ جی. راجہ بادشاہ آپ کو پتا ہی ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں, آپ کو بہت اچھی سروسز دیتے ہیں. 1775 آپ کو جو ہے وہ 1775 آپ پیسے ان کے ساتھ جو ہیں وہ بچا سکتے ہیں. اینڈ آف کورس وی آر بینگ اسپانسرڈ بائی اسپیشلی ہماری جو کرکٹ کی ساری ہے کوریج, وہ اس کو اکراز ڈاٹ کام پہ جائیں, آپ کو شریا کمپلائنٹ سروسز جو ہے وہاں پہ نظر آئے گی. عمران خان صاحب جو ہیں جی انہوں نے آج اپنی فیملی کے تھرو, پہلے آپ کو پتا ہے وہ اٹک جیل میں تھے, اب اڈیالہ جیل میں ہیں, اپنی فیملی کے تھرو ایک میسج بھیجا ہے اپنے ایکس کے اوپر, اور آپ کو پتا ہی ہے کہ 5 August سے یہ جو ہیں اریسٹڈ ہیں. تو جو ایکس کے اوپر آج انہوں نے ڈالا ہے اپنا میسج, انہوں نے کہا جی کہ چاہے جتنے مرضی مجھے چیلنجز ہوں, شروع میں جو تھے کہ مجھے زمین پہ سلایا جا رہا تھا اور اس وہاں پہ بہت سارے انسیکٹس تھے یعنی کہ کیڑے مکوڑے تھے اور بہت سارے مچھر تھے اور بیڈ بھی نہیں تھا, تو بہت میرے لیے مشکل تھا ایڈجسٹ کرنا, اور مجھے اسپرچولی مینٹلی فزیکلی انہوں نے بہت جو ہے تنگ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں اسٹرانگر فیل کر رہا ہوں اور فٹر فیل کر رہا ہوں, اور پچھلے دنوں میں نے بیٹھ کے اپنی ساری لائف کے اوپر جو ہے ایک نظر دوڑائی, انٹروسپیکشن کی, اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. اس کے علاوہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں, دوسری بکس بھی پڑھ رہا ہوں, اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے میں بیٹر بن سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ جو یہاں پہ پرزن کے اندر کنڈیشنز اگر مجھے سخت سے سخت بھی کر دیں گے تو بھی ایک انچ میں پیچھے حقیقی آزادی سے نہیں ہٹوں گا, میں ہمیشہ رول آف لا کو اپ ہولڈ کروں گا, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کروں گا, اور میں پھر سے ڈیمانڈ کرتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشنز, اور میں نے کہیں نہیں بھاگنا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے تم چلے جاؤ, میں نے کہیں نہیں بھاگنا ہے, میں نے رہنا بھی پاکستان میں ہے, مرنا بھی پاکستان میں ہے, میں کہیں نہیں جاؤں گا. اور یہ جو سائفر کا کیس ہے یہ صرف اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اس میں فارمر چیف آف آرمی اسٹاف باجوا اور ڈونلڈ رو جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے امریکہ کے, ان کو جو ہے پروٹیکشن دی جا سکے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسد عمر صاحب جو ہیں جی انہوں نے اپنے آپ کو سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے آج میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے اسلام آباد میں, اس کے باہر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈاکیومنٹس جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے اس کو لیگلی ویسے یوز کیا گیا تھا, اس میں کوئی بھی ان لیگیلٹی نہیں تھی. ایف اے اے جو ہے وہ اگست میں اس سال اس نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں اریسٹ کیا تھا اور ان کو پھر بک کیا تھا انڈر افیشل سیکرٹس ایکٹ, اور اس کے اوپر بات کر رہے تھے اسد عمر صاحب. انہوں نے کہا جی کہ یہ چار افیشلز جو تھے ان کو یہ سائفر دیا گیا تھا, ایک تو پرائم منسٹر کو, فورن منسٹر کو, آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو, تو میرا جو نام ہے صرف لیا گیا ہے لیکن پلاننگ منسٹری کو سائفر جو ایف آئی کی جو ایف آئی آر لکھائی گئی تھی سائفر کے سلسلے میں اس میں میری منسٹری کا کوئی مینشن نہیں ہے, تو اپنے آپ کو ذرا انہوں نے ڈسٹنٹ کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی سے. پاکستان کی سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ بیان آج شہباز شریف صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 350 بلین اکانومی جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے, یہاں پہ لو گروتھ ہے, کرنسی ویک ہے, اسکائی راکٹنگ پرائسز ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ کو پتا ہی ہے اور جنرل الیکشنز کی طرف جا رہا ہے, تو اس سلسلے کی یہ بات چیت کر رہے تھے آج ٹریڈرز کے ساتھ لاہور میں. انہوں نے کہا جی جب ٹریڈرز کام کرتے ہیں تبھی پاکستان آگے بڑھتا ہے, اکانومی اسٹرانگ رہے گی, ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی اسی وقت اس ملک میں آئے گی, اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر جو ہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. جب میں پاور میں آیا تھا 16 months کے لیے تو میں نے اپنا تمام جو پرسنل گرج تھا اس کو پیچھے رکھتے ہوئے پاکستان کے کو سیو کرنے کے لیے جو ہے کام کیا, اور اپنے پولیٹیکل جو اسٹیچر تھا اس کو بھی اسٹیک پہ ڈالا ملک کے لیے. عمران خان صاحب کو انہوں نے آج پھر سے کھینچا, انہوں نے کہا جی کہ ये جو ہیں انہوں نے میرے وقت میں یعنی میری جو 16 منتھس کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر سٹ انس کی اور مجھے تھریٹس دیے. نام تو ڈائریکٹلی نہیں لیا لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نشانہ جو ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کی طرف تھا. پاکستان کی جو انٹرم پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب, انہوں نے آج یہ امپریشن جو ہے وہ ڈسپیل کیا ہے یا ڈسمس کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو آ رہے ہیں کسی ڈیل کے انڈر یہاں پہ آ رہے ہیں جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب سیلف امپوزڈ ایکزائل میں ہیں سنس 2019. لاسٹ منتھ جو ہے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں اکٹوبر 21 کو آ رہے ہیں, اور پی ایم ایل این نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر طرح کی چیز کو فیس کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آئیں گے. شہباز شریف صاحب نے بھی اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جی پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے ان کا نام کلیئر کیا. تو اسی کے اوپر بات کرتے ہوئے کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور جب وہ آنا چاہیں گے تبھی آئیں گے, ہمارے ساتھ کوئی انہوں نے ڈیل وغیرہ نہیں کی ہے. جنید صفدر کی خبر تو بھی آپ نے سنی عرفہ باجی سے, جو مریم نواز کے بیٹے ہیں ان کی شادی آپ کو پتا ہی ہے, میں تھوڑی سی ڈیٹیلز خالی دوں گی, عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ سیف الرحمان کی بیٹی ہیں. سیف الرحمان فارمر نیب کے ہیڈ تھے اور بڑے آپ کو پتا ہے ملٹی ملینئر بزنس مین ہیں بیسڈ ان قطر. تو ان دونوں کی شادی جو تھی اگست 2021 میں ہوئی تھی اور دو سال کے بعد ہی ان کا آپس میں سیپریشن ہو گیا ہے. تو انہوں نے میڈیا کو کہا ہے کہ ہماری پرائیویسی کو آپ ریسپیکٹ کریں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو اس ڈیسیجن پہ پیس ملے گا, اس معاملے میں میں اور کوئی بھی آگے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام ہی اکاؤنٹ سے جو ان کی شادی کی تصویریں تھیں وہ انہوں نے سب ہٹا دیں, اور جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے تو آپ اس کی ریسپیکٹ کریں. یہ جو اب تھریٹس آ رہے ہیں بہت سارے ہائی اپس کو, جیسے کہ شاہ رخ خان صاحب کو بھی آیا تھا پچھلے دنوں میں جب ان کی یہ دو فلمیں جوان اور پٹھان آئی تھیں. تو اس کے بعد اب جو انڈیا کے انٹرنل افیئرز منسٹر ہیں, سوری ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں ایس جے شنکر صاحب, ان کو بھی یہ آئے ہیں بہت سارے تھریٹس. تو اس لیے ایس جے شنکر صاحب کو جو انہوں نے اپنے کامنٹس دیے تھے سکھ ایکسٹریمسٹ کے اوپر اور جو ان کا بڑا سخت قسم کا ایک سٹانس ہے انڈیا اور کینیڈا کی طرف بھی, اس کے اوپر ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو زیڈ کیٹیگری میں کر دی گئی ہے. ان کے پاس پہلے تھی وائی کیٹیگری میں, اور گورنمنٹ جو ہے یہ ڈفرنٹ قسم کی سیکیورٹیز انڈیا میں دیتی ہے ہائی اپس کو, مائنس زیڈ پلس زیڈ مائنس وائی پلس وائی ایکس اس طرح کر کے. تو یہ جو اسپیشل پروٹیکشن گروپ ہے اس کے انڈر جو ہے سیکیورٹی دی جاتی ہے پرائم منسٹر کو, اور ان پرائم منسٹرز کو بھی سیکیورٹی کور دیے جاتے ہیں پانچ سال کے لیے جب وہ پرائم منسٹر ہندوستان کے نہیں رہتے ہیں. انڈر زیڈ سیکیورٹی جو لوگ ہوتے ہیں آف نیشنل امپورٹینس ان کو 55 ممبر اسٹرانگ سیکیورٹی دی جاتی ہے, جس میں کہ پرسنل ہوتے ہیں ڈفرنٹ فورسز سے بھی, 10 کمانڈوز ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی گارڈز کے, 30 آرمڈ مین ہوتے ہیں جو کہ ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں کہ کس کس نے ان کے گھر کے اوپر دینا ہے پیرا, موبائل سیکیورٹی میں کون لوگ رہیں گے اور ان کے ویکل کو کون اسکاٹ کرے گا. تو چونکہ ان کی لائف کے اوپر خطرہ آیا تو اب ان کو یہ جو میکسیمم لیول کی جو زیڈ سیکیورٹی ہے یہ ان کو دی گئی ہے. آج جو ایک رپورٹ آئی ہے دا رپورٹرز کلیکٹیو اور الجزیرہ نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بٹھائی تھی, اس کے مطابق انڈیا کا جو بینک آف بروڈا ہے اس کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ بینک آف بروڈا نے بہت ہی ایزی کر دیا تھا اپنے ایجنٹس کے لیے پیسے چوری کرنا اپنے کسٹمرز کے. اس کے انڈر جو ہے جو رپورٹ یہ انویسٹیگیٹو آئی اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 27,000 یو ایس ڈالرز جو ہیں 362 جو کسٹمرز ہیں ان کے انہوں نے چوری کیے تھے ان لوگوں نے. اور یہ جب ایپ چلائی تھی انہوں نے موبائل بینکنگ ایپ بوب ورلڈ, تو اس میں ان کے لیے